नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीकी जेट विमानों को गिराए जाने से ईरान वार्ता पर कोई असर नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर मतदान स्थगित किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आए भूकंप में 8 लोगों की मौत। उत्तर भारत में भी झटके महसूस हुए। और नासा ने चंद्रमा की ओर बढ़ते हुए आर्टेमिस 2 के चालक दल द्वारा ली गई पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी कर दी हैं। और अब समाचार विस्तार से। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी विमानों को गिराए जाने का ईरान के साथ राजनयिक वार्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक रिपोर्ट।
मीडिया की खबरों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आशंका को खारिज कर दिया है कि अमरीकी विमानों को निशाना बनाए जाने से ईरान के साथ होने वाली बातचीत बाधित होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ जारी युद्ध के दौरान अपने विमानों को हुए नुकसान के बारे में पहली बार बयान दे रहे थे। ईरान और खाड़ी क्षेत्र में 2 अमरीकी विमानों को गिराए जाने की कल पुष्टि की गई थी। इनके 2 पायलट सुरक्षित हैं, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। इन घटनाओं से ये स्पष्ट है कि अमरीकी और इसराइली विमानों को ईरान के आकाश में अब भी खतरा है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा था कि अमरीकी रक्षा बलों का आकाश पर पूरी तरह नियंत्रण है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के हमलों से जहाजों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक बल प्रयोग को अधिकृत करने पर मतदान को स्थगित कर दिया है। 15 सदस्य परिषद को बहरीन के मसौदा प्रस्ताव पर कल रात मतदान करना था, लेकिन गुड फ्राइडे के सार्वजनिक अवकाश की वजह से कार्यक्रम में बदलाव किया गया। इस महीने बहरीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। प्रस्ताव पर मतदान की नई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। पश्चिम एशिया में संघर्ष आरंभ होने के बाद पहली बार जापान का एक एलएनजी टैंकर होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर पाया है, जिससे ऊर्जा के लिए बाहरी स्रोत पर निर्भर इस देश को कुछ राहत मिली है। जापान अपनी ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 90% हिस्सा खाड़ी देशों से प्राप्त करता है। आवश्यकता पूरी करने के लिए अपने आपातकालीन भंडार से निकासी करने वाले पहले देशों में जापान शामिल है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कल सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। सुश्री मेलोनी कल अघोषित यात्रा पर जिद्दा पहुंची थीं। सऊदी प्रेस एजेंसी ने खबर दी है कि बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई तथा इन्हें और मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय नौवहन और ऊर्जा सुरक्षा पर भी विचार विमर्श हुआ। सुश्री मेलोनी इसके बाद कतर और संयुक्त अरब अमीरात जाएंगी। उनकी यात्रा क्षेत्रीय तनाव और खाड़ी देशों पर ईरान के हाल के हमले के बाद ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ती हुई चिंताओं के बीच हो रही है। क्यूबा ने मानवीय आधार पर बंदियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमरीका की ओर से लगातार बने दबाव के बीच उसने कहा है कि 2000 से ज्यादा बंदियों को रिहा किया जाएगा। पूर्वी हवाना के ला लिमा कारागार से 20 से ज्यादा बंदियों को रिहा किया गया। अमरीका में क्यूबा के दूतावास ने बताया कि 60 साल से ऊपर के लोगों के अलावा महिलाओं और विदेशी नागरिकों को भी रिहा कर दिया जाएगा। ये पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ी सजा माफी है। अमरीका ने कहा कि वो इस बात पर बारीकी से नजर रखे है कि रिहा किए गए लोगों में राजनीतिक बंदी भी शामिल हैं या नहीं। अमरीकी प्रवक्ता ने बताया कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कितने राजनीतिक बंदी रिहा होंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में कल रात आए 5.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 8 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
अफगानी समाचार एजेंसी के अनुसार मध्य काबुल प्रांत के बगरामी जिले में घर गिरने से 8 लोग मारे गए। भूकंप से एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। अफगानिस्तानी सूचना मंत्रालय के बयान के अनुसार एक व्यक्ति के लापता होने की भी खबर है। जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र 181 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोगों ने बताया कि कंपन कुछ सेकंड तक रहा। शुरू में भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई, जिसे बाद में संशोधित कर 5.8 किया गया। विश्व दर्पण समाचार के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
कैलिफोर्निया में मोरेनो घाटी के पूर्वी हिस्से में लगी आग लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। मोरेनो घाटी के निकट के शहर की आबादी लगभग 2 लाख है। ये शहर लॉस एंजलिस से करीब 103 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तमिलनाडु में जन्मी सुश्री रिनी संपत वॉशिंगटन डीसी के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार बन गई हैं। वो वॉशिंगटन के राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत के थेनी में जन्मी संपत 7 वर्ष की उम्र में अमेरिका चली गई थी। उन्होंने कहा कि यह क्षण उनके लिए व्यक्तिगत और व्यापक सामुदायिक महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि डीसी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली दक्षिण एशियाई नागरिक होना उनके लिए बेहद मायने रखता है। उनके अभियान ने इस बात की पुष्टि की कि चुनाव में शामिल होने के लिए 4,500 से अधिक लोगों ने उनकी याचिका पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनकी उम्मीदवारी दूसरों को चुनाव लड़ने और अपने पड़ोसियों के लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। अभियान में दी गई जानकारी के अनुसार 31 वर्षीय संपत सरकारी ठेकेदार हैं, जो करीब 1 दशक से वॉशिंगटन में रह रही हैं। उन्होंने अपने अभियान को बुनियादी नागरिक सेवाओं और शासन सुधारों पर केंद्रित किया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आर्टिमिस 2 ओरियन अंतरिक्ष यान से ली गई पृथ्वी की पहली हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें साझा की हैं। मिशन कमांडर रीड वाइजमैन ने चंद्रमा की यात्रा के दौरान कैप्सूल की खिड़की से पृथ्वी की तस्वीरें ली हैं।
इस छवि में पृथ्वी घने बादलों से घिरी हुई दिखाई दे रही है। पहली छवि को हेलो वर्ल्ड नाम दिया गया है। इसमें अटलांटिक महासागर का विशाल नीला विस्तार दिखाई देता है। कल तक वाइजमैन और उनका दल पृथ्वी से 1,60,000 किलोमीटर दूरी पर थे और चंद्रमा की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें अभी 2,58,000 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। कल उनका गंतव्य पर पहुंचना निर्धारित है। ओरियन कैप्सूल में अमरीका के 3 और कनाडा का 1 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे और फिर कैप्सूल से उतरे बिना पृथ्वी की ओर वापस लौटेंगे। विश्व दर्पण समाचार के लिए मैं मृगनयनी पांडे।
नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्स को पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा ने ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्स ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया। नेपाल सरकार ने कहा है कि अवैध वित्तीय लेनदेन पर अंकुश लगाने और पूंजी का पलायन रोकने के लिए ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्स बंद करने का निर्णय लिया गया है। बिटकॉइन, एथेरियम, एनएफटी, स्टेबल कॉइन या डीईएफआई टोकन जैसी डिजिटल मुद्रा लेनदेन, खरीद, बिक्री, होल्डिंग समेत क्रिप्टो करेंसी में हर तरह की संलिप्तता प्रतिबंधित कर दी गई है। इससे पहले नेपाल राष्ट्रीय बैंक ने भी कई बार सार्वजनिक नोटिस जारी करके कहा था कि क्रिप्टो करेंसी से संबंधित गतिविधियां नेपाली कानून के तहत दंडनीय अपराध हैं। मालदीव में सैफ पुरुष अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में कल भारतीय फुटबॉल टीम को बांग्लादेश ने पेनल्टी शूटआउट में 3-4 गोल से हरा दिया। बांग्लादेश का ये दूसरा अंडर 20 सैफ खिताब है। आईपीएल क्रिकेट में कल पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में पंजाब किंग्स ने 18 ओवर और 4 गेंद में 5 विकेट पर 210 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। आईपीएल में आज दोपहर 3:30 बजे दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीकी जेट विमानों को गिराए जाने से ईरान वार्ता पर कोई असर नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर मतदान किया स्थगित। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आए भूकंप में 8 लोगों की मौत। और नासा ने चंद्रमा की ओर बढ़ते हुए आर्टिमिस 2 के चालक दल द्वारा ली गई पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी की हैं। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।